नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने सरकार के समर्थन, हरित प्रौद्योगिकी और मेक इन इंडिया पहल पर जोर देते हुए मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश स्थल के लिए भारत की संभावनाओं का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेंगलुरु में नए अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन की सराहना करते हुए कहा, यह अमेरिका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए आवश्यक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना तथा चीन की शुआई झांग की जोड़ी मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों की आकांक्षाओं से संचालित भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र अभूतपूर्व कल्याण के दौर से गुजर रहा है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम के भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश को ऑटो उद्योग में पिछले वर्ष 12% की वार्षिक वृद्धि हुई। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल की शक्ति से देश के ऑटो उद्योग की वृद्धि को समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत हरित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधनों के विकास पर भी ध्यान दे रहा है। देश इस समय मोबिलिटी क्षेत्र में भविष्य को दिशा देने के लिए प्रत्येक निवेश के लिए उत्कृष्ट गंतव्य स्थल बन गया है। भारत के ऑटो उद्योग के विकास क्षमता में मेक इन इंडिया पहल की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा है कि पीएलआई स्कीम में मेक इन इंडिया अभियान को नई गति प्रदान की है और 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस योजना ने इस क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराए हैं। भारत में पिछले कुछ वर्ष में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तीव्र वृद्धि पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 640 गुना बढ़ गई है।
भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ गया है। पिछले साल 800 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के अशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी ये एक्सपो चल रहा है। आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। अनेक नई गाड़ियां भी यहाँ लॉन्च होने वाली हैं। ये दिखाता है कि भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर कितनी पॉजिटिविटी है।
इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो ऑटोमोबाइल और संबंधित व्यापार में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयोजक बन गया है। उन्होंने कहा है कि भारत तिपहियों और ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा विनिर्माता है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा है कि ग्लोबल एक्सपो भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के नवीनतम प्रगति को दिखा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार भारत को ऑटो क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपियन में 2 पदक विजेता मनुभाकर, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं ने प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सम्मानित होने पर खुशी व्यक्त की। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पैराशूटर मोना अग्रवाल ने कहा है कि ये सम्मान पाकर वे गौरवान्वित हुए हैं।
जो सम्मान दिया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे कोचेस सब साथ में हैं, तो सभी दिल से खुश हैं कि इस बार जितने भी मेडलिस्ट थे जिनको पहले कभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, उन सभी को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत खुशी की बात।
अर्जुन पुरस्कार विजेता एक अन्य पैरा तीरंदाज खिलाड़ी राकेश कुमार ने कहा है कि उनकी 8 साल की कड़ी मेहनत सफल हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री शाह ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बेंगलुरु में अमेरिका का नया वाणिज्यिक दूतावास भारत और अमेरिका के संबंधों को प्रगाढ़ करने और विस्तार के लिए आवश्यक है। आज बेंगलुरु में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों में खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष क्षेत्र, रक्षा ड्रोन और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शशनुगरत्नम दो दिन की ओडिशा यात्रा पर आज भुवनेश्वर पहुंचे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिंगापुर के राष्ट्रपति का स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति की इस यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि आगामी 28 से 29 जनवरी के उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव से पहले हो रही है। भारतीय मूल के नेपियन सांसद चंद्र आर्य अधिकारी आधिकारिक रूप से कनाडा के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और सदन को संबोधित किया। श्री आर्य कर्नाटक के तुमकुर जिले के निवासी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी समेत कई निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवार आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। सोमवार को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दोपहर पार्टी का संकल्प पत्र पार्ट 1 जारी किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संवाददाताओं से बातचीत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर दिल्ली में पहले खत्म की गई आबकारी नीति को फिर से लागू करने की घोषणा को लेकर निशाना साधा। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने में विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए काम नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को की जाएगी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुठभेड़ स्थल में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। ये मुठभेड़ कल बीजापुर जिले के पामेड़ और बासागुड़ा क्षेत्र में हुई थी। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए और घायल जवान अब खतरे से बाहर है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस उसे आगे की जांच के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन ले गई। लीलावता अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें गहन चिकित्सा इकाई से बाहर भेज दिया गया है। डॉक्टर नितिन डेंज ने बताया है कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर है। उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र में पुणे नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। घटना सुबह नारायण गांव के पास हुई। पुलिस के अनुसार 4 महिलाएं, 4 पुरुष और एक छोटी बच्ची इस दुर्घटना में मारे गए। सरकार ने महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में महाकुंभ मेला क्षेत्र के परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला केंद्रीय अस्पताल स्थापित किया है। और मेलबर्न में भारत के रोहन बोपन्ना और चीन की शुआई झांग की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने सरकार के समन्तर हरित प्रौद्योगिकी और मेक इन इंडिया पहल पर जोर देते हुए मोबिलिटी क्षेत्र में निवेश स्थल की भारत की संभावना का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेंगलुरु में नए अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन की सराहना की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो जाएगी और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना तथा चीन की सुआई झांग की जोड़ी मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।